ये तुमको लड़ना चाहिए, नहीं होगा तभी तुम लड़ेगा इस जगत में, अपने आप लड़ेगा। दुर्योधन को अर्जुन कृष्ण ने समझाया कि तुम लड़ो, उन्होंने तो नहीं कहा। उनके तरफ में कितने लाखों लोग थे, उनको भी नहीं समझाया तभी वो लोग लड़े। इसलिए वो कह रहे हैं कि देखो, यज्ञार्थात कर्मणो लोको अनन्यत्र कर्म बंधन, ये सीखो जब मैं आत्मा हूं। अभी हम लोग भगवान को भूल करके इस जगत में सुख सुख खोज रहे हैं, किंतु कोई सुखी नहीं है। भगवान की सेवा छोड़ करके, भगवान का स्मरण छोड़ करके कोई भी सुखी नहीं हो सकता। इसलिए पहले यह समझना होगा जो हम आत्म तत्व हैं, भगवान के नित्य सेवक हैं। अभी हम उनको भूल करके संसार में हमने अपने को कर्तव्य समझ लिया कि इनका पालन पोषण करना हमारा कर्तव्य। इसके लिए कहते हैं यज्ञार्थात कर्मणो, यहीं से आरंभ हो। भगवान की प्रसन्नता के लिए भी कोई कर्म करो, और यदि ऐसा नहीं करता है तो तुम जो भी कर्म करेगा वो तुम्हारा बंधन हो जाएगा। कोई भी कर्म करेंगे आप, कर्म किसको कहते हैं? गीता में कृष्ण बतलाते हैं अपने लिए जो कुछ शरीर के लिए जो कुछ करते हैं वो कर्म है, किंतु वही चीज भगवान के लिए करेंगे तो कर्म नहीं हो करके वो उपासना भक्ति मार्ग हो जाएगा। बाजार से आपने अपने लिए सब्जी लेकर के आई, रसोई बनाया, ये तो हो जाएगा कर्म, क्योंकि अपने लिए किया, इसका फल आपको भोगना पड़ेगा इस जन्म में या दूसरे जन्म में। किंतु भगवान के लिए रसोई बनी, भगवान के लिए बाजार किया, कोई भी काम हो भगवान के लिए किया और भगवान को अर्पित कर दिया जाए तो ये भक्ति है। दोनों के ऊपरी व्यवहार में कोई अंतर नहीं, निष्ठा का अंतर है। इसलिए हमारे जो कर्म है करते रहें, किंतु भगवान के लिए इन्हीं को कीजिए। अपने को आत्मा समझ करके इस शरीर में आसक्त न हो, इसके लिए ये उन्होंने बताया। गीता में बहुत तरह के ज्ञान बतलाए गए, किंतु पहला है जो दूसरे के अध्याय में दिया गया, जिसको ब्रह्म ज्ञान कहते हैं या आत्मज्ञान कहते हैं। शरीर आप जितना भी अच्छा रखेंगे एक दिन जरूर छोड़ना पड़ेगा, इसलिए इसको और इसके बिना परमार्थ भी नहीं होगा, यह भी जरूरी है। इसलिए इसको हम रखेंगे, किंतु उद्देश्य होना चाहिए भगवत प्राप्ति के लिए, चिर शांति और सुख के लिए, हम भगवत उपासना के लिए इस शरीर को रक्षा। इसलिए कृष्ण ने अर्जुन को द्वितीय अध्याय में लाभ हानि जीवन मरण जस अपजस इस जगत में रहते होगा, इसको भोगते हुए इसको सहते हुए चित्त को हमारे अंदर में लगाओ, इसका उपदेश दिया। दुखों में जरूर इस जगत में रहने से, किंतु इस शरीर को हम इसलिए धारण करेंगे कि इसके द्वारा भगवत उपासना होगी, भगवत तत्व को जान करके इस जगत से सदा के लिए हम लोग सुखी होकर के चले जाएंगे, ये उद्देश्य के लिए चले। दूसरा ये गुह्य ज्ञान, दूसरा ज्ञान उपासना का, जगत में कर्म करते हुए उसका फल भगवान को दे दीजिए। जत करोसी जदस्नासी जज्जोसी ददासी तप जत तपस्या कौनते तद कुरुष्यम अदर्पण, जो कुछ करते हो करो, जो कुछ खाते हो जो कुछ तुम करते हो भगवान को उसका फल अर्पण कर दो। ये परमात्मा ज्ञान है, ये गुह्य तर ज्ञान। और तीसरा है सर्वगुह्य मनमना भव मद भक्तो मदयागी मांग नमस्तु मामेव यस्यसिते पतिजानो प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान प्रत्यज्य माम एकम शरणं व्रज। जितने संसार के लौकिक धर्म हैं, शरीर संबंधी धर्म हैं, मन संबंधी धर्म है उनको छोड़ करके आत्मा का धर्म जो भगवान के प्रति है हमारे प्रति पहले शरणागत हो, यहीं से भगवान की सेवा आरंभ होगी। पहले शरणागति तो तुम्हारी हो, इसलिए इसको गुज्य से भी गुज्यतम और उसमें भी कृष्ण से संबंध रखकर मन मना भव, तुम अपने चित्त को हमारे अंदर में दो, मेरे बन जाओ, मन मना भव, गोपियों जैसे मन मना भव। यदि नहीं कर सकते, युद्धभूमि लिए उनके लिए संभव पर नहीं है, मन मना भव मद भक्तो, हमारे समय हमारा नाम रूप गुण लीला इत्यादि का कीर्तन करो, भगवान के नाम के समान और दूसरा कोई जगत में सहज साधन उपयोगी पथ नहीं है भगवान को पाने के लिए। इसमें कोई कष्ट नहीं, ठीक है चंद्र आ जाए, कोई भी इसमें कष्ट नहीं है, सहज रूप में तो कितन लगी मेरो राधा रमण गिरिधारी और हमको बहुत ही सुंदर रूपवान गुणवान हमको लड़का मिले और हमको बहुत बड़ा भारी विश्व में राज्य मिले। तो कृष्ण ने पूछा जे क्यों? इसलिए कि संसार के लोग हमसे डरते हैं, आपसे डरते हैं, कि कृष्ण का भजन करने से वो रास्ते का फकीर बन जाएगा और कृष्ण उसका सब कुछ ले लेंगे, इसलिए गरीब लोग उनको भजन नहीं करते। बड़े बड़े धनी हम जानते हैं वह दुर्गा का और गणेश इत्यादि का भजन करेंगे, कृष्ण का भजन नहीं करते, किंतु डरने की बात नहीं है, ये अंत में दुखदायी है। कृष्ण का भजन बहुत सुखदायी है, इसलिए कृष्ण का भजन किया। पांडवों ने द्रौपदी जैसी स्त्री मिली जो विश्व की सबसे सुंदरी रूपवती और गुणवती, पुत्र भी ऐसे हुए और पृथ्वी का राज्य भी उनको मिला, किनको उनको दुखदायी समझ करके ये सब कुछ छोड़ करके अंत में। तो कृष्ण का भजन करने से यदि कोई सुख चाहे, यदि समृद्धि चाहे, वो भी होगा। उनके भक्त प्रहलाद महाराज नहीं थे, ध्रुव नहीं थे, कैसी समृद्धि उनकी रही? किंतु भगवत भक्ति एक ऐसी चीज है जो भक्ति के मिलने के बाद में इन सब चीजों को तुच्छ समझता है, दुखदायी समझता है, वो अपने आप छोड़ देता है, उसकी रुचि नहीं रहती, देने पर भी नहीं लेते। गीता में भी ऐसा बतलाया गया, भगवान यदि देते भी हैं तो वो नहीं लेते, यहां तक की मुक्ति नहीं लेते। इसलिए कृष्ण की भक्ति से डरना नहीं चाहिए, कृष्ण की भक्ति होने से सारा विश्व संतुष्ट हो जाता है, तस्मिन तुष्टे जगत तुष्टि। एक समय की बात है, दुर्वासा ऋषि दुर्योधन के पास में गए और दुर्योधन ने उनकी बड़ी सेवा की, उन्होंने कहा जे वर मांगो। उसने वर मांगा जी महाराज मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि यदि आप हमारे ऊपर संतुष्ट हैं तो अपने 60,000 शिष्यों के साथ पांडव लोग काम्य वन में है उनके पास में जाइए, और कब जाइए? जबकि द्रौपदी खा लेगी, बर्तन माँज करके उलाट देगी, पांडव लोग भी खा पी करके शांत हो गए हैं, तीसरे पहर में जाइए और उनसे कहिए कि आपको भोजन कराएं, मैं इसी में संतुष्ट हूं। ये ठीक है, 60,000 शिष्यों को लेकर के भरी दोपहर के बाद में जब द्रौपदी ने खा पी करके बटुए को मांट करके उलाट करके रख दिया, वहां पर पहुंचे, बोले जी आज बड़ी भूख लगी है, हमको जल्दी से कुछ खिलाओ। महाराज युधिष्ठिर बड़े डर गए, कहीं आप विषम पाप न कर दें। उन्होंने कहा अच्छा आप पधारिए, स्नान करके कुंड में अभी आइए, आपको रसोई पूरी मिलेगी, आप यहां पर प्रसाद पाइए। चले गए वो लोग स्नान में करने के लिए कुंड में, पास ही काम्य वन में कुंड है बिमला कुंड, उसी के निकट ये रहते थे। इतने में द्रौपदी के पास में गए, देखो प्रिय अब ये ऋषि आएगा हमको अभी संपाद दे देगा, यदि नहीं खिलाएंगे अब क्या खिलाया जाए, तुम कृष्ण को बुलाओ, हमारे बुलाने से नहीं आएंगे, तुम्हारे बुलाने से आ सकते हैं। द्रौपदी कृष्ण को पुकारी, कृष्ण हंसते हुए आए, बोले ये सखी हमें बड़ी भूख लगी है, पहले खिलाओ। उन्हें ये हम तो इसी के लिए बुलाए, हमने हमको एक बर है कि हम जिस बटुए में रसोई बनाती हैं और रसोई बनाने के बाद में हम जितने लाखों लोगों को खिला दें कोई बिना खाए हुए नहीं लौटेगा, किंतु जब भी मैं अंत में सबको खिला करके अपने खा लूं और उसको मार करके उलाट दूं तो उसमें से कुछ भी नहीं निकलेगा, तो इसमें मैंने खा करके उलाट दिया है उसे। अरे कहीं लाओ तो देखें। फिर उन्होंने बुलाया कहीं उसमें कुछ नहीं है तो देखें, तो उसमें भीतर देखा और अपने नख से एक साक का तिनका उसमें लगा हुआ था उसको निकाला और मुख में दे करके और पानी एक लोटा पिया, सिर्फ तो उसने कहा बेकार आई और सारे ऋषियों के पेट भर गए। वहीं से भागे, भीम को गदा लेकर के भेजा भगवान ने, जाओ उनको बुला लाओ खाने के लिए। उस समय वो लोग भागे जैसे यदि हम जाएंगे कहीं अम्बरीश दशा न हो जाए, इसलिए वहां से भागे और न जाने कहां पृथ्वी को पार करके ब्रह्मलोक इत्यादि में वो लोग चले गए। यदि कृष्ण प्रसन्न है तो सभी लोग प्रसन्न हो जाएंगे, सब देवता लोग प्रसन्न है, सारे मनुष्य प्रसन्न हो जाएंगे, और यदि भगवान प्रसन्न नहीं हुए, कृष्ण नहीं प्रसन्न हुए, कोई भी प्रसन्न नहीं। इसलिए बिना डर के निडर होकर के निर्भय होकर के कृष्ण का भजन करने वाला वही सुखी और शांति का रह सकता है। कलयुग में एक बात है, हरे राम हरे नाम हरे नाम अव केवल कलौ नास्तेव नास्तेव गतिरन्न था। आप स्नान करें न करें, पवित्र हो अपवित्र हो, मृत्यु से या पपड़े हुए हो, पैखाना टट्टी भी निकल रहा हो, तो भी भगवान का नाम ले सकते हैं। निर्धन व्यक्ति भी ले सकता है, धनी व्यक्ति भी हरि नाम ले सकता है, इसमें कोई भी जाति पाति या किसी चीज का मैं बहुत बुद्धिमान हूं मैं मूर्ख हूं, सबके लिए मनुष्य जाति के लिए ये उद्धार करने वाला बहुत शक्तिशाली ये नाम है भगवान का। यहां तक कि जोर से उच्चारण करेंगे पशु पक्षी कीट पतंग और पेड़ पौधे जो भी घास इत्यादि उनके भी कानों में जाएगा और उनका भी कल्याण हुआ। यहां तक कि हम यहां कीर्तन कर रहे हैं हवा के तरंगों में, यह नाम विश्व के कोने कोने में पहुंच करके वातावरण को शुद्ध करके इसको पवित्र बना देता है। जैसे घी आग में देते हैं आसपास के वातावरण को पवित्र कर देता है हवा मिलकर, और ये नाम जो कीर्तन है सामूहिक रूप में जो हम कीर्तन करते हैं विश्व ब्रह्मांड में हवा के तरंगों से चारों तरफ जाकर के चित्त को शुद्ध कर देता है। यदि आग नहीं होता तो न जाने हम कहां रसातल में गए होते। इसलिए भगवान का नाम कलयुग में सबसे सरल सहज और स्वाभाविक, अपने घर में रह करके और कुछ भी नहीं होता है, कोई आराधना नहीं होती, भगवान नाम का आश्रय करने से उसका कल्याण होता है। किंतु यदि वह गुरु परंपरा के माध्यम से संतों के माध्यम से वैष्णवों के माध्यम से यदि आए वो तो अधिक फलप्रद होता है, अन्यथा उसको विलंब होता है। इसलिए समस्त शास्त्रों का यही तात्पर्य है, कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग में भगवान का इन नामों में भी कृष्ण का नाम समस्त नामों से श्रेष्ठ है, और इन कृष्ण के नामों में भी ब्रह्म परमात्मा होने पर भी नारायण नाम भी मुख्य नाम है, किंतु इससे भी गोविंद गोपाल राधा बल्लभ, नंदनंदन, यशोदानंदन, ये सब नाम श्रेष्ठ है। इन नामों का यदि कोई कीर्तन करे अपने घर में बाहर में, जैसे अकेले दुखेले किसी यंत्र से या ऐसे भी, तभी उसका कल्याण होगा। रात में कर सकते हैं, दिन में कर सकते हैं, बिना स्नान किए हुए कर सकते हैं, स्नान करके भी कर सकते हैं, खाने पीने के बाद भी कर सकते हैं, इसमें कोई भी नियम नहीं है। और श्रद्धा पूर्वक हो तो कोई बात ही नहीं है। इससे धीरे धीरे साधुओं का संग भी होगा, आत्मज्ञान भी हो जाएगा, भगवान के प्रति प्रेमा भक्ति होगी और उसका जीवन सुधर जाएगा। आज मैं यही कर सके अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। अभी एक कीर्तन महामंत्र की धुनी लगाइए।
Thank you.
समझा दी।
Thank you. आप लोग।